नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। पानी के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पारित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सहकारिता के व्यापक दायरे से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संपर्क और गतिशीलता बढ़ाने के लिए दो अहम रेल परियोजनाओं को मंजूरी। और दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का नई दिल्ली में शुभारंभ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में विपक्ष के भारी हंगामे और वॉकआउट के बीच राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया। इसमें भूजल दोहन पर नियंत्रण के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले ये बिल प्रवर समिति को भेजा गया था। हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विधानसभा सत्र जनता की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित और उनके समाधान के लिए आहूत किया गया। उन्होंने विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। श्री शर्मा ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से जनता के हित का कोई ठोस मुद्दा नहीं रखा गया। वहीं हाल ही में प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने और प्रभावितों से मिलने के लिए भी विपक्ष का कोई नेता जनता के बीच नहीं गया। इससे पहले विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाने के मामले पर विपक्ष ने भारी शोर शराबा किया और विधानसभा अध्यक्ष से लगातार इस पर व्यवस्था देने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी विधायक वेल में आकर नारेबाजी भी करते रहे। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने आज विधानसभा में कहा कि 12 जिले में तेंदुपत्ते की अवैध तुड़ाई और कटाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग के कामों में भ्रष्टाचार और कोताही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने उपवन संरक्षक अनिल कुमार यादव को राजकार्य में लापरवाही बरतने और अनुशासनहीनता के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए। वन मंत्री विधायक ललित मीना की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उपवन संरक्षक यादव के खिलाफ वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कटाई की गंभीर शिकायतें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। सहकार भारती और सहकारिता विभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों को सशक्त बनाने और सुलभ बैंकिंग सेवाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहकारिता के व्यापक दायरे से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
ये सहकारिता हमारा वो क्षेत्र है जो आमजन की इससे आवश्यकता पड़ती है। 2 अक्टूबर से लेकर के 15 दिन का हमारा अभियान चलेगा, जिसमें सहकारिता के सदस्य पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे, जिससे हमारा राजस्थान पूर्ण रूप से सहकारिता के क्षेत्र में मजबूती से काम करे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सहकार भारती की मार्गदर्शिका का विमोचन किया। समारोह में सदस्यता अभियान ऐप का भी लोकार्पण किया गया। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने आज राजभवन में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े से मुलाकात की। प्रोफेसर वर्मा की कुलगुरु बनने के बाद राज्यपाल से ये पहली शिष्टाचार भेंट थी। नेपाल में फंसे लोगों की मदद के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में विशेष सेल स्थापित की गई है। इसके साथ ही लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करने की मंजूरी दी है। 22 सितंबर से लागू होने वाली ये छूट आम आदमी के जीवन को आसान बनाएगी। आज हम बात कर रहे हैं हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र की। जीएसटी दरों में कटौती से हस्तशिल्प उद्योगों को मजबूती मिलेगी। इससे घरेलू बाजार में मांग बढ़ेगी और कारीगरों को कारोबार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों हस्तशिल्पियों की आजीविका की भी रक्षा होगी। राजस्थान का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है। पाली जिले के चूड़ी निर्माता ने जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इनकी शुरूआत बिल्कुल सही समय पर की जा रही है। उन्होंने इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया।
मैं उमेश पुरी, पाली राजस्थान का रहने वाला। हमारा चूड़ियों का व्यवसाय है। हम जो चूड़ियां बनाते हैं वो पूरे देश भर में बिकती है। सरकार ने जो जीएसटी कम की है उससे हमारा व्यवसाय को फायदा होगा और हमारे ग्राहक को भी फायदा होगा, इसलिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं।
उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी नरेश ने बताया कि घरेलू मांग बढ़ने से खपत और बिक्री अधिक होगी।
उन लोग का जो कंजप्शन बढ़ेगा, मतलब जो है माल सस्ता होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे, कम रेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा बिक्री होगी, एक्सपोर्ट भी ज्यादा से ज्यादा होगा। मेवाड़ का जो ट्रेडिशनल आइटम है जैसे ये बाजोट वगैरह हमारे यहाँ पे बनती है, इस टाइप से लकड़ी के आइटम बनते हैं वो सस्ते हो जाएंगे, सब चीजों में मतलब रेटें कम होगी तो सब खुश होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल लाइनों के 177 किलोमीटर लंबे खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 3,169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इससे संपर्क और गतिशीलता में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी।
भागलपुर दुमका रामपुरा डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड से रामपुरहाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुरहाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुरहाट की तरफ गाड़ियां काफी जा सकेगी।
रेल लाइन दोहरीकरण की यह परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर दुमका रामपुरहाट के लिए है। मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर करीब 4,447 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएंगी। इससे रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आने का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव जगतपुरा में लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेंगे। वे जयपुर जंक्शन पर नए प्रवेश द्वार के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही वंदे भारत मेंटेनेंस फैसिलिटी का भी उद्घाटन करेंगे। श्री वैष्णव गांधीनगर रेलवे स्टेशन का भी मुआयना करेंगे। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ किया। श्री उइके ने कहा कि आदि संस्कृति एक डिजिटल अकादमी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों के लिए आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और जानकारी का एक ऑनलाइन बाजार है। उन्होंने कहा कि इससे सांस्कृतिक संरक्षण और आजीविका के नए अवसर पैदा हो सकेंगे। केंद्रीय मंत्री एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के परियोजना अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय विरासत के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास होने चाहिए। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिन लोगों को संदेश देता है कि आत्महत्या की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। समय पर मदद लेने से जीवन को बचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
भारत में हर साल मानसिक तनाव, अवसाद, नशे की लत, अकेलेपन और सामाजिक दबाव सहित कई कारणों से 1,00,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर जान गंवाते हैं। ये पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसे देखते हुए वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों में 10% तक कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य इकाई की ओर से टेलीमानस, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और मनोदर्पण पहल की गई है। इनके माध्यम से लोगों को चेतावनी संकेत पहचानने और परामर्श तथा चर्चा सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के इस बार की थीम कार्य के माध्यम से आशा का सृजन है। आइए अपने परिवार, मित्रों और स्वास्थ्य कर्मियों के सक्रिय सहयोग और समर्थन से इस दिशा में मिलकर प्रयास करें। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में वन विभाग की ओर से आज से गाइड्स के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मौके पर उप वन संरक्षक रामानंद भाकर ने कहा कि देशी विदेशी पर्यटकों को उद्यान के बारे में पुख्ता जानकारी देना सभी गाइड्स का कर्तव्य है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए ब्यावर में आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए की जा रही जागरूकता गतिविधियों पर चर्चा की और अबूझ सावों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और सुरक्षा सखियों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में भी जिला कलेक्टर कमल चौधरी ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में इससे होने वाले नुकसानों की जानकारी देने को कहा। चूरू में आज कपास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को कपास फसल का उत्पादन बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजकुमार कुलहरी ने बताया कि एक दिन की इस कार्यशाला में कपास फसलों में होने वाले रोगों, कीटों की पहचान तथा नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। और अब मौसम। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में अगले 1 सप्ताह तक कमी के आसार जताए हैं। इस दौरान दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 17 सितंबर से बरसात का सिलसिला फिर से शुरू होने की संभावना है। इस बीच बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर और श्रीगंगानगर के सादुल शहर में हल्की बरसात हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। पानी के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पारित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सहकारिता के व्यापक दायरे से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संपर्क और गतिशीलता बढ़ाने के लिए 2 अहम रेल परियोजनाओं को मंजूरी। और दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का नई दिल्ली में शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।